السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى سورة شورى آيات نمبر 20 سے 35 تک دیکھیں گے. من کانا یرید حرث الآخرت، جو بھی ارادہ رکھتا ہے آخرت کی کھیتی کا، نزد لہو فی حرثی، ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کی کھیتی میں. ومن کانا یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، نؤتی ہی منہا، تو ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں. یہ آیت اس حوالے سے بہت اہم آیت ہے کہ اس میں ہماری پوری زندگی سموئی ہوئی ہے، پوری زندگی کا لائحہ عمل ہے، پلاننگ ہے اس ایک آیت میں. زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کدھر کے لیے گزارنی ہے. حرص کہتے ہیں، کھیتی کو بھی کہتے ہیں، پھل کے لیے بھی آتا ہے، بیج کے لیے آتا ہے، اور نتیجے کے لیے آتا ہے، یعنی جو رزلٹ ہے، جو اس کا فروٹ ہے، جو نتیجہ ہے. ویسے عام زبان میں حرص کھیتی کو ہی کہتے ہیں، مگر یہاں پہ عمل کے نتیجے کی طرف اشارہ ہے کہ جو عمل کا نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے حرص الآخرہ، یعنی اپنی حرص عمل کے نتیجے کو دیکھنا چاہتا ہے آخرت میں، نزد لہو، ہم زیادہ کر دیتے ہیں فی حرصی، اس کی کھیتی. آخرت کا ارادہ کیسے کیا جاتا ہے اور دنیا کا ارادہ کیسے کیا جاتا ہے؟ آخرت کا ارادہ ایسے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، ثواب کے لیے کیا جائے، آخرت کی کامیابی کے لیے کیا جائے، جنت کے لیے کیا جائے، یعنی وہاں کو فوکس کر کے، وہاں کو ذہن میں رکھ کے، اس نیت سے کیا جائے. چاہے وہ جنت ہے، چاہے وہ اللہ کی رضا ہے، چاہے وہ مغفرت ہے، یعنی جو فوکس ہو وہ کسی بھی عمل کا نتیجہ میں کیا دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کے ذریعے میری آخرت سمر جائے. یہ ہے یریدو حرصل آخرہ. ٹھیک ہے، تو ایک ہے حرصل آخرہ اور ایک ہے حرصل دنیا. یہ بہت اہم آیت ہے، اس لیے آپ لوگوں کا بہت فوکس ضروری ہے اس میں، کیونکہ اس کے مطابق پھر ہم نے پلاننگ کرنی ہے اپنی زندگی کی. اچھا، حرصل دنیا کیا ہے؟ اب دوسری طرف حرصت دنیا ہے کہ کام دنیا کی، یہ نہیں ہے کہ دنیا کے کام کیے جائیں، یہ نہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بہت جلدی اس کو اس طرح ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ جو دنیا کے کام کرے گا جو آخرت کے کام کرے، ایسا ایسی بات نہیں ہے. اور پھر دنیا کے کاموں میں ہم کہتے ہیں جی یہ کرنا، وہ کوئی شاپنگ پہ گئے، جاب کی، کچھ بھی اور دنیا کے کام کیے، وہ ملنا جلنا، یہ سب جی حرصت دنیا ہو گیا. حرصت آخرہ کیا ہے جی؟ نماز روزہ حرصت آخرہ؟ نہیں نہیں نہیں، آپ نے صحیح نہیں سمجھا. پھر حرصت دنیا یہ ہے کہ دنیا کی جو یعنی دنیا کے لیے نتیجہ چاہنا اپنے عمل کا. مثال کے طور پہ کہ یہاں پہ مجھے کچھ اچھا مل جائے، مجھے لوگ اچھا سمجھیں، مجھے لوگ نیک سمجھیں، یا میرے نمبر بن جائیں، یا مجھے یہاں کی کوئی چیز مل جائے، کوئی پروموشن مل جائے، کوئی کانٹیکٹس بن جائیں، میں یہاں پہ ترقی کر لوں، مجھے پیسہ مل جائے. یہ سارے مطلب دنیا کے بینیفٹس ہیں نا. وہ دنیا کے بینیفٹس چاہتا ہے یا آخرت کے بینیفٹس چاہتا ہے؟ سمجھ لیں اس طرح، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے یا آخرت کا فائدہ چاہتا ہے؟ یعنی بیسیکلی چاہنے کے اوپر بات ہے کہ
काम वो क्या कर रहा है अब उसकी बात नहीं यहां पे हो रही, चाहत किधर की है। अच्छा बाज दफा हमारी चाहत दोनों की होती है, हमें ये भी होता है कि भाई हमें यहाँ पे भी बड़े अच्छी मेरी शोहरत हो जाए, यहाँ पे भी मुझे सब मिल जाए और वहां पे भी मिल जाए, अल्लाह भी राजी हो जाए और जनाब मुझे मेरे लिए यहाँ पे भी कुछ अच्छी चीजें मेरे लिए हो जाए। तो देखिए वो मैं अब आपको इस हदीस से एक्सप्लेन करूंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी है, उसने पूछा एक शख्स अल्लाह के रास्ते में लड़ता है और सवाब चाहता है और शोहरत भी चाहता है कि भाई चलो मेरा नाम भी हो जाएगा कि भाई देखो कितना बहादुर, कितना कवि, कितना जंगजू, शोहरत भी चाहता है और सवाब भी चाहता है, तो उसको क्या मिलेगा? फरमाया उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि ये नहीं उसने कहा कि सिर्फ शोहरत चाहता है, उसने पूछा सवाब भी चाहता है और शोहरत भी चाहता है। तो ये हालांकि सवाब की भी नीयत थी मगर चूंकि साथ शोहरत की भी थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा ये बात फरमाई कि अल्लाह ताला सिर्फ उस अमल को कबूल करता है जो खालिस उसके लिए किया जाए, खालिस उस अमल के जरिए अल्लाह ताला का चेहरा मतलूब हो, अल्लाह की रजा मतलूब, अल्लाह का दीदार मतलूब हो। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये आयत, जितना भी मैं इसके ऊपर जोर दूं कम है, क्योंकि ये डिफाइन करती है हमारी सारी जिंदगी के कामों को, डिफाइन करती है हमारी सारी जिंदगी के आमाल को। ये ना हो कि हम बड़े अच्छे अच्छे बजाहिर तो वो सारे अच्छे ही हैं, मिसाल के तौर पर ये जो हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं कितना अच्छा काम है, कितना नेकी का काम है, लोग आपको इसके ऊपर बड़ी तारीफें भी करते होंगे, बड़ी वाह भाई वाह क्या बात है, देखो जी इतना वक्त निकालती है, देखो जी इतना कर रही है, ये बड़ी एफर्ट है इसकी, आप तो पता नहीं क्या चीज बन गई। देखिए मेरी इससे ये है कि भाई जब मैं लोगों में बैठूं ना जरा बात कर सकूं, लोगों को पता चल सके मुझे भी कुछ आता है, वरना ऐसे होता है कि जब कोई बात करता है मुझे तो समझ ही नहीं आती, तो जरा मुझे भी कुछ समझ आनी चाहिए ना, पता चलना चाहिए, मैं कोई बात करूं लोग सुने। ऐसा इल्म सिवाय आग में ले जाने के और कुछ नहीं। या मेरी नीयत ये हो कि चलो मैं कहीं दर्स देने बैठ जाऊंगी, मुझे भी लोग कोई पूछेंगे, कोई लोग मेरी तारीफ होने लगेगी, शोहरत हो जाएगी, तो आजकल ये भी बहुत ट्रेंड है, तो चलो इस तरह से इसके लिए मैं सीख लेती हूँ। हाँ चलो, और नहीं कुछ तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बच्चे बड़ा सवाल करते हैं तो फिर मुझे सवालों के जवाब नहीं आते तो इसलिए कर लेती हूँ। तो फरमाया नूती मिन्हा, जो हर सब दुनिया चाहेगा नूती मिन्हा हम उसको देंगे, मिन्हा उसमें से, ये नहीं फरमाया कि जितना वो चाहेगा उतना, अल्लाह ताला की चाहत है जितना भी दे, जितना भी दे अल्लाह ताला चाहे तो उसको कुछ भी ना दे, चाहे तो उसको उससे भी ज्यादा दे दे जितनी उसने चाहत की, और चाहे तो उससे कम दे दे, यानी ये अल्लाह ताला के ऊपर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया मन का न युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद, कि जो शख्स दुनिया का तालिब होगा ना ऐसे लोगों में से हम जिसे चाहें और जितना चाहें हम देंगे, ऐसा नहीं है कि जितनी तुम्हारी चाहत होगी अल्लाह ताला की चाहत है, यानी तकदीर में जो लिखा अल्लाह ताला उतना ही देगा, लेकिन जो हरसल दुनिया का तालिब है ना, हरसल आखिरत का तालिब है, उसको ये नहीं कहा गया कि हम जितना हम चाहेंगे देंगे, नहीं नजिद लहूफी हरसी, उसकी हर्ष में इजाफा होगा, उसकी हर्ष को अल्लाह ताला बढ़ा देगा। तो दोनों खेतियां हैं, इंसान जब सुबह करता है तो वो अपने नफ्स को असल में सेल पे लगा देता है, बेचता है अपने नफ्स को, कोई उसके जरिए जन्नत खरीद लेता है और कोई जहन्नुम का सौदा कर लेता है। सुबह होती है सब भाग रहे हैं, कोई कहीं अपनी एफर्ट्स लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, लेकिन हर एक की एफर्ट आखरत के लिए नहीं लग रही, किसी की दुनिया के लिए लग रही, किसी की आखरत के लिए लग रही। अब बजाहिर एक दो लोग जा रहे हैं मिसलन कमाई करने के लिए, एक कमा रहा इसलिए कि मेरे बच्चों की जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे ऊपर डाली है, इनको खिलाना पिलाना है और इनके मोहताजी ना हो, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, ये अल्लाह ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है तो मुझे इसको पूरा करना। इसकी भी पूछ होगी मेरे अहलो अयाल की। ये हर साल आखिरा में वो डाल रहा है, हालांकि एक आप सोचते होंगे कि दुनियावी काम है ना, कौन सा वो नमाज के लिए खड़ा हो, इसका भी उसको अजर मिले। और एक वो बंदा है कि वो बस कमा रहा है, कमाएंगे तो हमने ये खरीदना है, वो करना है, वो करना है, उसकी कोई ऐसी नीयत नहीं है। कमाओ, ज्यादा से ज्यादा कमाओ, कि इससे बड़ा घर, इससे बड़ी गाड़ी, वो फला इस तरह आगे निकल गया, मैंने उससे आगे निकलना। उसके लिए ठीक है, दुनिया में से जितना अल्लाह ताला ने उसके लिए लिखा होगा वो मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। सोचने की जरूरत ये है कि हमारा वक्त किधर लग रहा है, हर साल दुनिया में हम लगा रहे हैं या हर साल आखिरा में लगा रहे हैं। और अगर हम दोनों का सोच रहे हैं कि हम तो दोनों के लिए ही कर रहे हैं, हम अक्सर काम करते हैं ना तो उसके अंदर हमारी ये नीयत हो जाती है कि चलो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, लेकिन फलां के आगे भी मेरे नंबर बन जाएंगे, उसके आगे भी अच्छी बन जाऊं। हम किसी को खाना खिला रहे हैं, अच्छा ये भी इसलिए है कि देखो ना फिर सभी कर रहे हैं, अगर मैं ना करूंगी तो वो कहेगी कि जो है ना इसने नहीं मेरा खाना किया, इसने नहीं मुझे पूछा। किसी के घर इयादत के लिए भी जा रहे हैं तो साथ यही नीयत है कि सभी जा रहे हैं ना, अगर मैं ना गई तो फिर बुरा लगेगा। किसी के घर किसी की वफात पे जा रहे हैं तो तब भी ये इरादा है कि फिर उसके बाद देखे ना अच्छा नहीं लगता, वो कहेगी यही नहीं आई ना, काम भी आ रहे हैं तो नंबर बनाने के लिए, मेरे नंबर बन जाए, इसकी हमें बड़ी फिक्र होती है नंबर बनाने की। अल्लाह ताला के पास नंबर बने उसकी फिक्र नहीं है, लोगों के पास नंबर बन जाए इसका कोई भी अजर नहीं है। खाना खिला रही हूं मैं इसलिए खाना खिला रही हूं, कल को ये भी हमें बुलाएंगे ना, इसके कोई नंबर नहीं, अल्लाह के पास कोई नंबर नहीं है। हाँ शायद वो हो सकता है वो कल को आपको वाकई बुला ले, हो सकता है वो बुलाए ही ना, आपके उससे ताल्लुकात खराब हो जाए। आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं इसलिए कि अब ये भी मुझे दे, ये तो काफी अमीर हैं तो ये मुझे इसके बदले में, आज मैं इनके बेटे की शादी पे कुछ दे रही हूं, कल को ये मेरे बेटे की शादी पे कुछ देंगे। हो सकता है कि वो कुछ भी ना दे, हो सकता है कि वो दुनिया में ही ना रहे, हो सकता है वो कहीं मूव हो जाए, आपको कुछ भी नहीं मिला, हर साल दुनिया में लगाया था ना, और अगर हर साल आखिरा में लगाया कि तोहफा देना भी मोहब्बत को बढ़ाता है, ये भी सुन्नत है। मेरी जितनी हैसियत है ठीक है मैं दे देती हूँ, अल्लाह ताला के हाँ उसका रिवॉर्ड जरूर मिल जाएगा। तो फिक्र किसकी करनी चाहिए कि जब मैं सुबह करती हूँ तो मैं किस हर्ष में अपना अमल किस हर्ष में डाल रही हूँ, किस खेती में बो रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी नीयत क्या है। याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं सब शरीकों से बेहतरीन हूँ, जिसने किसी को मेरे अमल में शरीक किया वो अमर उसी के लिए, वो अमल उसके लिए है, या नहीं ये नहीं होगा कि आपने अल्लाह ताला के लिए भी किया और किसी और के लिए भी किया तो अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले, नहीं। आपने फरमाया लोगो अपने अमाल को अल्लाह की खातिर खालिस करो, इसलिए कि अल्लाह ताला खालिस को कबूल करता है, और ये मत कहो कि ये चीज अल्लाह और रिश्तेदारी के लिए, क्योंकि जो चीज रिश्ते की खातिर किसी को दी जाए वो रिश्ते ही के लिए है, अल्लाह ताला को उसमें कोई हिस्सा नहीं। यानी रिश्तेदारों को इसलिए ना दो कि अब क्या करें, कोई तोहफा ना लेके गए तो बुरा मानेंगे, क्या करें अब फिर बातें बनाएंगे, क्या करें फिर हमें अच्छा नहीं समझेंगे, या इसलिए कि अब फिर उनको पता भी तो चले ना कि हम कितने अमीर हैं, हमारे पास कितना कुछ है, तो उसका कोई अजर नहीं। आप देखिए एक बहुत सारी एग्जांपल्स, एक दर्स होता है उसमें 50 लोग शरीक हुए, ठीक है। अब वो जो 50 लोग शरीक हुए उसमें कुछ की नीयत ये थी कि अल्लाह की बात सुनेंगे, अल्लाह ताला की बात सुनेंगे और आखरत की याद दहानी होगी, मेरा दिल साफ होगा, धुलेगा, अल्लाह ताला की कुर्बत मिलेगी, मुझे शौक है अल्लाह की बातें सुनने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों की ये नीयत, दूसरे की ये नीयत है खाना बहुत अच्छा वो बनाते हैं, खाना पता नहीं कहाँ से मंगवाया होगा तो खाना मिलेगा, लिखा हुआ है लंच विल बी सर्व। तीसरे एक और ग्रुप है जिसकी ये नीयत है कि इस मौके पे कपड़े पहनने का भी मौका मिल जाएगा, वो नया सूट जो मैंने बनवाया ना वो पहन के जाऊंगी, कहीं पहनने का मौका ही नहीं मिलता, चलो इस दर्स में पहन जाता। एक और चौथा ग्रुप है जिसकी नीयत क्या है, पार्टी टाइम होगा, आखिर में जाऊंगी, थोड़ा सा कुछ सुन लिया, बाकी फिर फ्रेंड्स के साथ मौका मिल जाएगा बातें करने का, बिल्कुल एंड में जाऊं ताकि दर्स भी खत्म होने वाला होगा और उसके बाद गपशप होगी, मजा आएगा, उससे भी मुलाकात हो जाएगी, सुना है वो भी आ रही है, वो भी आ रही है। अब आप मुझे बताएं इनमें किसकी नीयत है जो हर्ष आखिरा की है और किसकी है जो हर्ष दुनिया की है। ज्यादातर आप अपनी जिंदगी में नोट कीजिए हमारे काम, हम क्या चाहते हैं, हर्ष दुनिया, हमारे जो बीज हम बोल रहे हैं जिसका नतीजा हम चाहते हैं इस अमल का, अपने अमल का नतीजा नोट करें। ये बड़ी जगा देने वाली आयत है कि इंसान हर अपने अमल में चेक करे मैं क्या चाहती हूँ इससे, हर्ष दुनिया या हर्ष आखिरा। आप देखिए इस सारे ग्रोहों में से सिर्फ एक ग्रोह है जो हर्ष आखिरा चाहता है, बाकी सारे हर्ष दुनिया ही चाहते हैं। अल्लाह अकबर, तो उनके लिए कोई अजर नहीं, वो अपने कपड़ों की शो ऑफ तो हो ही जाएगी, खाना भी मिल ही जाना है, मुलाकात भी हो ही जानी है, लेकिन अजर किसको मिला, जो पहला ग्रोह था, सारी चीजें उसको भी मिल गई और उसको सवाब मिल गया, बाकियों को सिर्फ वो ही चीज मिली, आखरत का सवाब कुछ नहीं है उनके लिए। तो ये बहुत अहम है, बहुत अहम है कि हम चेक करते रहें, अपनी नियतों का भी जायजा लेते रहें। अल्लाह ताला ने फरमाया ना इन्नहा उला युहिब्बुन अल आजिला व यदरून वराहुम यौमन थकीला, इन लोगों का हाल ये है, ये बस जल्दी जो मिलने वाली है, नहीं नहीं दुनिया, इससे बड़ी मोहब्बत रखते हैं और छोड़ रखा है, गाफिल है उससे जो यौमन थकीला है, जो भारी दिन है, कि उसके लिए भी मैंने कुछ करना है। इवन हज पे जाते हैं, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया ना अमीन अन्नासी में यकुलू रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह मुझे दुनिया में दे दे, मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो दे, वमा लहू फिल आखरत, वमा लहू फिल आखरत मिन खलाक, उसके लिए आखरत में कोई हिस्सा नहीं। और जो कहता है अल्लाह मुझे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखरत हसन, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने बना उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, उनके लिए भी उतना हिस्सा है जितनी वो कमाई करेंगे, ये नहीं कि उसने मांग लिया तो बस हो गया उसके लिए। कुछ लोगों की ख्वाहिश ही दुनिया है, इसने कहा मैं तो अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगती हूँ, लेकिन सच बात है मैं उनके लिए दुनिया ही ज्यादा मांगती हूँ, यहां पे उनके सारे काम अच्छे हो जाएं, आखरत की कोई फिक्र ज्यादा नहीं है। तो हम अगर फिक्र करते भी हैं, अगर हम सोचते भी हैं, अगर हम नतीजा चाहते भी हैं, तो आप देख लें जिन कामों को हम नेकी का काम कहते हैं उनमें से भी 90% वो हैं कि जो जिनका नतीजा हम दुनिया में ही चाहते हैं, आखरत के लिए हमारी कोई चाहत ही नहीं होती। हर रोज सुबह हर शख्स अपनी जिंदगी की दुकान खोलता है और फिर अमल करता है अपनी सांसें लगा के, अब ये सौदा नफे का भी कर सकता है नुकसान का भी। अब कुछ अमल है हम कहते हैं नहीं हमारी तो कोई नियत ही नहीं, नहीं होगी कहीं ना कहीं कोई नियत है, चाहे वो छुपी भी होगी, होगी जरूर। और अगर आप कहते हैं नहीं मुझे कुछ भी नहीं नियत है, मैं रोबोट की तरह बस करती हूँ काम, रोबोट की तरह बैठी, रोबोट की तरह खाना शुरू कर दिया, रोबोट की तरह खाना, कोई पता ही नहीं कि क्या है, तो फिर इंसान तो ना हुए रोबोट ही हुए, एक मशीन है, उसका भी कोई अजर नहीं। क्या एक रोबोट है हम? नहीं, इंसान जब भी खाना भी खा रहा है तो कुछ ना कुछ तो है कि वो बड़ा मजा आएगा, मजा तो आ ही जाना है, लेकिन अल्लाह इस खाने से भी शुक्र गुजारी आए, इस खाने को खा के भी इतनी मेरे अंदर कुव्वत आए, अल्लाह मैं अच्छे अच्छे काम कर सकूं, तुझे राजी कर सकूं, मेरी सेहत अच्छी रहे। ताकि सेहत अच्छी होगी, सेहत का भी ख्याल रखना, या अल्लाह तेरा ही हुक्म है। इतनी लंबी बात अगर आपने नहीं भी सोची ना, बस जहन में ये है कि कुव्वत आएगी, इससे जिस्म सही रहेगा तो मैं कोई काम कर सकूंगी, अल्लाह की इताअत का कोई काम तभी मेरे से हो सकेगा। और जिस्म ही बीमार पड़ गया, कमजोरी इतनी हो गई तो कुछ ही उठ ही ना सकूं, यकीन जाने आप रात को सोते भी हैं ना, उसका भी आप अजर पा सकते हैं। रात को सोते मैं इसलिए जल्दी सोती हूँ, मैं तहज्जुद के लिए उठना होता, मेरी नमाज वरना वरना रह जाती तहज्जुद की। ये सोना भी आपके लिए युरीदु हर सल आखिरा है। और अगर इसलिए सोते हैं कि बस सोते हैं, बस रात को सोते हैं क्योंकि बस सोना, मुझे बस नींद बड़ी आती है, मुझे सो गए बस, कोई उसके अंदर है ही नहीं कि कोई कोई अब ताजा दम होगी, सुबह को उठना है मुझे, फजर पढ़नी है, चलो तहज्जुद को भी छोड़ें, फजर पढ़नी है मुझे, मुझे सारे काम करने हैं, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर मेरे अल्लाह ने डाली है, मुझे अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करनी है। याद रखिए, युरीदु हरसद, दुनिया तो काफिर भी करता है, वो भी कहता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। अरे मोमिन में और काफिर में क्या फर्क है, ये सोचते नहीं आप? ये है फर्क कि जो मोमिन है उसका हर काम युरीदु हरसल आखिरा, वो चाहता ही आखरत है, उसको दुनिया भी मिल जाती है, ये नहीं कि दुनिया नहीं मिल जाती, दुनिया तो रास्ते में पड़ी भी है। जैसे मैंने आपको कहा, वो बंदा सुबह को निकला है, उसका रिस्क के हलाल के लिए कोशिश करना, नहीं, हलाल हलाल मेरा जो मैंने कमाई है हलाल करनी, नहीं ये चीज नहीं लेनी, ये चीज उठानी है, क्यों, वजह क्या है? सिर्फ ये वजह है एक कि जो है मेरा अल्लाह मुझे हराम से मना करता है, इसलिए मैं हलाल की तरफ जाता हूं। तो ये उसकी हर सल आखिरा में कोशिश है, मेहनत है, इसका अजर है। और हर सद दुनिया यही है कि इंसान बस उठा गया, कमाई की, बस कमाना है हमने, तो वो तो काफिर भी कर रहा है। कितने लोग निकले होते हैं, काम एक ही है, सबकी नियतों के फर्क है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है हम लोग अपने कामों को सही तरीके से, उसकी सही नियत करके और उसको अपने लिए अजर का बायस बना सकते हैं हर काम को। वो ही काम जिसको हम कहते हैं ये तो दुनियावी काम है, मसलन मिलना जुलना, मिलके बैठ के खाना, आप किसी दावत पे गए, आप मिलके बैठ के खा रहे हैं, आपका क्या नियत थी, आप यहाँ पे आए किसी दावत में, क्या क्या सोच के आए घर से? हर कोई कुछ, हर मेहमान कुछ कुछ सोच के तो आया होगा, वो बहुत मजे का खाना बनाती है, चलो आउटिंग हो जाएगी, मजा आएगा, सब बैठेंगे, क्या अपने मुसलमान भाई से मिलना और दावत को कबूल करना, ये भी सुन्नत है। इसने मुझे दावत दी है और इसने मुझे बुलाया है, ये भी सुन्नत है कि मैं उसके घर जाऊं और मिलना जुलना मुसलमान भाइयों के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत का पैदा करता है, इसका जरिया है। तो इसलिए मैं उसके पास चल के जा रही हूँ, हालांकि उसके लिए मेरी गाड़ी भी चलेगी, मेरे मुझे वक्त भी निकालना पड़ेगा, लेकिन मेल मिलाप से ही मोहब्बत आपस के अंदर होती है। वहां जाऊंगी, कोई अच्छी बात होगी, कोई अच्छी बात सीखूंगी, कोई अच्छी बात की जाएगी, करूंगी कोई अच्छी बात, और भी इसको अपनी अपनी नियत के मुताबिक और भी उसको बेहतर कर सकते, नजिद लहू फी हर्सी, हम उसको ज्यादा देते हैं उसकी हर्स में, और भी ज्यादा आपका अजर बढ़ सकता है। आप ये नियत करके जाएं कि मैं वहां पे जाके कोई अल्लाह रसूल की बात करूंगी, कोई दीन की बात करूंगी, कोई उनको दावते दीन दूंगी। तो जो हरसल आखिरा करता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए बढ़ा देता है, नजिद कहा गया, बढ़ाता कैसे है, यानी उसका अजर बढ़ा देता है। आप मिसाल के तौर पे, आप एक आपने काम किया है, उसका क्या अजर एक गुना ही मिलता है, मिसाल के तौर पे आपने खजूर सदका किया, क्या आपको एक खजूर का ही अजर मिलेगा? नहीं, नजिद लहू फी हर्सी, उसको अल्लाह ताला बहुत पहाड़ के बराबर कर देता। आपकी नीयत के मुताबिक, आपकी नीयत इतनी ग्रेट थी कि अल्लाह ताला ने उसको इतना बड़ा कर दी। तो ये नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कितना ही ज्यादा अल्लाह ताला बढ़ाए। एक आप हर्फ पढ़ते हैं कुरान से, क्या उसकी एक ही नेकी आपको मिलती? नहीं, 10 मिलती हैं। अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया ना आपकी खेती। आपने कोई भी एक नेकी का काम किया, इरादा ही किया था अभी, एक तो उसके ऊपर ही नेकी मिल गई, और 700 गुना भी मिल सकती और बेहिसाब भी मिल सकती है। सबर है उसके ऊपर, बेहिसाब नेकी है, बेहिसाब। तो अब आप देखें, एक सुभान अल्लाह है, उसके ऊपर कितनी नेकियां मिल जाती। अल्लाह ताला बढ़ा देता है, उसको एक नहीं रहने देता। और दूसरी बात ये, नजीद लहू फी हर्सी ही का मतलब क्या? अल्लाह ताला उसकी नेकियों को की तौफीक बढ़ा देता है, उसको नेकियों की और तौफीक देता है, उसके लिए नेकियों के और दरवाजे खोल देता है। उसने एक नेकी की, अल्लाह ताला उसकी खेती में और इजाफा कर देगा, उसको और नेकियों की तौफीक दे देगा। एक नेकी एक थोड़ी रहती है, फिर अल्लाह ताला उससे आगे और नेकियों के कामों में उसको मुआवनत करता है, उसकी आसानी कर देता है, उसके लिए और नेकी करना आसान हो जाता है, और आसान हो जाता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, अम्मा मन आता व तका, जो देता है तकवा भी तैयार करता है, अल्लाह ताला क्या उसके लिए करता है? मनो यस्सिर लिल युसरा, उसके लिए हम आसानी कर देते हैं, और नेकियों में आसानी हो जाती है, और आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। तो उसका इंसान को कितना फायदा हुआ ना, जो हर साल आखिरा में डालता है, फिर दुनिया में भी उसको मिल ही जाता है। नजीद लहू में ये है कि दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको दे देता है। हम सोचते हैं ना, पता नहीं दुनिया मिलनी ही नहीं, हमने बस आखिरत के लिए कर लिया, मैं दुनिया का क्या मेरा बनेगा, दुनिया भी अल्लाह उसको देगा। अब जो कमाई करने के लिए जा रहा है, उसको दुनिया तो मिल रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको ये नहीं कि उसके उसके रिस्क में कोई कमी आ गई उसकी नीयत की वजह से, क्योंकि उसकी देखो तो कितनी ज्यादा बढ़ गई, अल्लाह ताला ने ज्यादा कर दी, उसको दुनिया में भी दे दिया और आखरत में तो उसके लिए हो ही गया, क्योंकि उसने आखरत की नीयत की थी। आपने किसी को कोई चीज खिलाई है, उसने भी आपकी दावत कर दी, आपने तो ये नीयत नहीं की थी कि वो भी मेरी दावत करे, लेकिन क्या हुआ, उसने कर दी, आपको दुनिया में भी फायदा मिल गया और आखरत का भी आपका फायदा हो गया। तो हर साल आखिरा में लगाने का फायदा क्या है? दुनिया में भी अल्लाह ताला दे देता है, दुनिया का ये प्रॉमिस नहीं है कि दुनिया में जरूरी मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया में कुछ ना कुछ तरह से उसको कॉम्पेंसेट करता है, और कुछ नहीं तो उसके लिए चैन और सुकून होता है। याद रखें, जो हर सब दुनिया में ही सिर्फ लगाता रहना ना, उसके लिए चैन और सुकून नहीं होता। अरसल आखिरत का लगाने वाला ना हमेशा मुतमईन रहता है, इसलिए कि उसने किसी के बदले के लिए किया ही नहीं, उसको नहीं बाद में अफसोस होगा कि हाय मुझे ये मिला नहीं, हाय मुझे किसी ने दिया नहीं, हाय मुझे मैंने इसके साथ ऐसा किया था, इसने नहीं मुझे ये रिवॉर्ड दिया, उसको ये गम नहीं रहता, क्योंकि उसने इसके लिए किया ही नहीं था। हाँ, हर सब दुनिया वाला हमेशा बेचैन रहे, मुझे नहीं मिला, मैंने इतनी मेहनत की। तो अरसल आखरा में लगाने वाले के लिए दुनिया में भी अल्लाह ताला चाहे तो दे दे, बरजख में भी उसको मिलेगा, यानी मरने से दुनिया में भी मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा, और कयामत के दिन तो मिलेगा ही ना, तो बरजख में भी देखिए ना, नेक आमाल इंसान के लिए कब्र में भी उसके लिए फायदेमंद होते हैं, उसके लिए अलीजीन में अल्लाह ताला मकाम देता है, कयामत के दिन भी ये नेकियां उसको काम आएंगी। क्या तो ये सब चीजें उसके लिए कहाँ से, दुनिया में उसने सिर्फ एक नियत की थी और उसे कहाँ तक उसका रिवॉर्ड पहुंच गया। खाना खिलाना एक नेकी है, जो खिलाने वाला है वो ये नहीं सोच के खिला रहा कि आएंगे और मेरे लिए तोहफे लाएंगे और फिर मैं मुझे ये मिलेगा, या मेरे इनके साथ कॉन्टेक्ट बन जाएंगे और फिर कल को आज इनको बुलाऊंगी, कल को ये मेरे काम आएंगे, इस तरह की नीयत नहीं थी। खाना खिलाना एक नेकी है, मेरे दोस्त अहबाब अजीज और कारिब इनका भी हक है मेरे ऊपर। तो किस तरह नियतें भी इंसान के लिए किसी अमल को नेकी बना देती हैं, और नियतों के ही फर्क से वही अमल यहीं पे इस दुनिया का ही होके रह जाता है और उसका कोई अजर आखरत में नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सिर्फ दुनिया की फिक्र में रहता है अल्लाह ताला इसके मामले को बखेर देता है और उसकी आंखों के सामने फकर और तंगदस्ती कर देता है। मैंने देखा ना आपने कुछ लोगों को, बस वो रोते ही रहते हैं हमेशा, हाय कुछ नहीं, हाय ये, हाय परेशानी, हाय फलां फलां फलां, ऑल द टाइम उनका एक ही चीज होती है। और फिर फरमाया उसको दुनिया में से सिर्फ उतना ही मिलता है जितना हिस्सा उसके लिए पहले से मुकद्दर कर दिया गया। इतनी मेहनत कर रहा है, सुबह से जाता है रात तक मेहनत करता है, फिर भी वो रोता ही रहता है, फिर भी वो थका हुआ है, फिर भी वो इतना अपने हालात से परेशान रहता है। और उसको ये होता है कि भाई इतना सब बस मिला, मैंने तो मेहनत इतनी की थी। और जो आखरत के लिए करता है अल्लाह ताला उसके मामले को मुजतमे कर देता है, यानी इकट्ठा कर देता है, बखेरता नहीं है उसके कामों को, उसके दिल को गनी कर देता है, वो बेपरवाह हो जाता है, बस मेरा ये काम था आगे अल्लाह के ऊपर है, मुझे अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया मेहनत करो और इसके लिए कुछ काम करो तो मैं कर रहा हूं, आगे जो मेरे मुकद्दर में होगा वो मुझे मिल जाएगा। वो उसका दिल मुतमईन रहता है और दुनिया उसके पास खाक आलूद होके आती है, दुनिया तो उसको मिल ही जाती है, उसके पास आ ही जाती है क्योंकि तकदीर में जो लिखी वो उसको मिलेगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी तमाम फिक्रों को सिर्फ एक फिक्र बना दिया ना, और वो आखरत की फिक्र है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया की फिक्र के लिए काफी है, दुनिया की फिर उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला काफी हो जाए। समझ आई बात? ये सारी फिक्रों को सिर्फ एक फिक्र बना दी, एक फिक्र जो है जो हमें परेशान करती है वो आखरत की फिक्र होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला टेक केयर कर लेगा हमारी दुनिया की फिक्रों की, वो काफी हो जाएगा, दुनिया का काम खुद ही अल्लाह ताला बना देगा। और जिसकी फिक्र दुनिया के अहवाल में मशगूल रहे तो अल्लाह ताला को उसकी कोई परवाह नहीं होगी वो किस वादी में जाके हलाक हो रहा है, बस दुनिया की फिक्रें हैं, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे ना कर दे वो ना, भाई अल्लाह ताला को फिर कोई परवाह नहीं तुम्हारी, अल्लाह भी उनके हवाले ही कर देता है फिर इंसान को, उसको नहीं परवाह जहां मर्जी जाके मरे। तो इसी टॉपिक से एक और हदीस भी आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज्जा वजल फरमाता है, ए इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, मेरे तेरे दिल को गिना से भर दूंगा, नहीं कर दूंगा, नहीं बेपरवाह कर दूंगा, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं दिल को मशगूलियात से भर दूंगा और तेरे फकर को दूर नहीं करूंगा। यानी अगर अल्लाह के लिए अपने आप को फारिग कर लेना, अल्लाह ताला दिल को गिना से भर दे, दिल बेनियाज होगा, और सारी चीजें दुनिया की है ना, अल्लाह ताला उनकी टेक केयर करे, लेकिन हमें फिक्र किसकी होती है? आप देखें हमारे दिल पे गालिब की क्या कौन सी फिक्र है, दुनिया की, आखरत की तो बहुत कम होती है, हम सोचते भी बहुत कम है उस बारे में, बहुत कम हमारी तवज्जो उस तरफ होती है। दिन में कितनी दफा दुनिया की फिक्रें दिल में आती हैं, कितनी दफा आखरत की आती हैं। और ये भी क्वेश्चन अपने लिए लिखें, कितना मैं अपना टाइम हर सुल आखरा के लिए लगा रही, कितना अपना टाइम मैं हर सुल दुनिया चाहती हूँ, कितने कामों में मैं हर सुल आखरा चाहती हूँ, कितने कामों में मैं हर सुल दुनिया चाहती हूँ। 20-80 है, 50-50 है, क्या है कुछ तो पता हो ना, या एक तरफ 90% लग रहा दूसरी तरफ सिर्फ 10% लग रहा, वही काम होगा सिवाय नमाज वगैरह के या कोई एक तिलावत कर ली, उससे सिर्फ हर्षल आखरा चाहिए, बाकी तो सब हर्ष दुनिया ही है, ऐसा तो नहीं हो रहा। ये ना हो कि हम आखरत के जब कयामत के दिन खड़े हो अपने नामा अमाल को खोले तो उसमें अल्लाह ना करे ये सब तो तुम्हारा सब दुनिया के लिए ही था, तो तुम्हें वही मिल गया, अल्लाह ताला ने जितना चाहा तुम्हें दे दिया, अब यहाँ के लिए तो तुमने कुछ किया ही नहीं था, तो यहाँ के लिए क्यों मिले? या मिक्स मिक्स नियतें थी, मिक्स हर चीज में मिक्स, चलो अल्लाह ताला की तरफ से भी चलो सवाब का काम भी हो जाएगा, लोग भी खुश हो जाएंगे, लोग खुश होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी का दिल खुश कर दिया, अल्लाह ताला का ये भी हुक्म है किसी मुसलमान का दिल खुश कर देना, ये भी एक नेकी है, ये वाली नहीं नियत थी, दिल खुश कर दिया मतलब है कि कल को ये मेरी मतलब मुझे जरा पूछे। देखिए दिल के ऊपर ना नजर सिर्फ अल्लाह की है, बहुत सारे नेकी के काम भी हर से दुनिया उनसे इंसान चाहता है, बहुत सारे, इवन कुरान पढ़ना, इवन ये सीखना, इवन तिलावत करना, बाज दफा हम उससे भी सिर्फ दुनिया ही चाहते हैं। और बहुत सारे दुनियावी जिनको हम काम कहते हैं, मिसाल के तौर पे अपने बच्चों की टेक केयर करना, इनको हम दुनियावी काम समझते हैं, वो भी हम अपनी नियत से उसको हर्सुल आखिरा में काउंट कर सकते हैं, उसका भी हम अजर पा सकते हैं। तो कताता जैसे कहते ना कि अल्लाह ताला आखरत की चाहत करने वाले को दुनिया भी दे देता है, मगर दुनिया की चाहत करने वाले को आखरत नहीं देता, याद रखें यह बात। तो हमारी तलब पे है, हमारी नियत पे है, हम क्या चाहते हैं। आप दुनिया के तालिब हैं या आखरत के तालिब हैं? और अल्लाह ताला ने इस आयत में आखरत के तालिब को और दुनिया के तालिब के दरमियान जो फर्क किया ना, आप देख लें, आखरत के तालिब को दुनिया के तालिब पे मुकदम किया। पहले देखिए आखरत के तालिब की बात आई है, उसके बाद दुनिया के तालिब, तो उसको सुपरसीड हुआ ना वो, उससे ऊपर हुआ। फिर आखरत के तालिब के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया हम उसकी खेती में इजाफा करेंगे, मैंने आपको इजाफे का भी बताया कि किस तरह इजाफा होगा। और दुनिया के तालिब के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया हम उसकी खेती में से उसको कुछ हिस्सा देंगे, मिनहा उसमें से देंगे। फिर नंबर थ्री, आखरत के तालिब के मुतल्लिक ये नहीं बताया कि उसको दुनिया में से कुछ देंगे या नहीं, हो सकता है उसको दुनिया में से कुछ हिस्सा दिया जाए, ये भी हो सकता है कि उसको दुनिया में से कुछ भी ना दिया जाए, ये भी हो सकता है। मगर मैंने आपको बताया सुकून तो उसको जरूर मिलता है, क्योंकि नेकी करने के बाद सुकून दिल में आता है। और दुनिया के तालिब के मुतल्लिक फरमाया कि उसका आखरत में एब्सोल्युटली कोई हिस्सा नहीं है, नो वे। आखरत के तालिब को मैंने आपको बताया कि भाई हाँ ठीक है, दुनिया में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि आपने नियत की है कि भाई मैं इसको ये तोहफा दे रही हूं अल्लाह की रजा के लिए दे रही हूं, हो सकता है कल को वो आपको कुछ भी ना दे, दुनिया में से तो नहीं आपको कुछ मिला लेकिन आपका दिल मुतमईन रहता है, अल्लाह के लिए किया था बस ठीक है, मैंने रिश्तेदारों को दिया, इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं इतने तोहफे लेके गई इनके लिए, मैंने इनके साथ देखो ये भलाई की, मैं इसके उस वक्त में काम आई। आपने अगर आखरत के लिए किया आपको परवाह भी नहीं होगी, दिल मुतमईन है, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया, आपको दुनिया में तो नहीं कुछ मिला ना, लेकिन दिल आपका मुतमईन है स्टिल, दिल का इत्मीनान जरूर मिल जाएगा, वैसे जो चाहे कोई फायदा ना मिले। अगर हाँ, अगर आपने दुनिया के लिए किया, हाँ दीजिए ये भी मुझे कल को दें, दिल में कहीं उम्मीद थी कि आज मैंने इसके साथ भला किया है कल को ये भी मेरे साथ भला करेगा, और उसने नहीं किया, तो आखरत में भी ना कुछ मिला और दुनिया में नहीं भी ना कुछ मिला। लोग कहते हैं ना, एक मशहूर है कि दुनिया नकद आखिरत उधार है, उधार नहीं है, उसका फायदा दुनिया में भी मिलता है। अगर मटेरियल उसमें फॉर्म में नहीं भी मिले तो सकूने कल्ब की सूरत में तो मिलता है ना। फिर आप देखें खेती जो होती है, खेती का लफ्ज यहाँ पे लाया गया, खेती में आपको पता है कि हार्ड वर्क होता है, इंसान उसमें हल चलाता है, फिर बीज बोता है, पानी लगाता है, फिर फसल पकने तक उसका इंतजार करता है, तो मुशक्कत है ना, निगहदाश्त करता है उसकी थ्रू आउट पूरा साल, किसान किस तरह से उसके ऊपर पूरा साल उस खेती के साथ लगा रहता है, ऐसे नहीं कि बीज डाल के बस उसके बाद सो गया, अब जब उगेगा तो फिर ही ठीक है, फिर ही मैं फसल काटूंगा, नहीं वो पूरा साल उसकी निगहदाश्त करता है। इसी तरह हर्सुल आखिरा वाला भी कितनी उसके ऊपर मेहनत करेगा, उसके बाद उसकी उसको प्रोटेक्ट भी करता है कि भाई आखिरत तक पहुंच जाइए ना, यही ये अमल मैंने हज किस लिए किया, इसलिए कि लोग कहें हाजन बीबी, इसलिए कि लोग कहें जी हज कर लिया, चलो इसने हज कर लिया, इसके लिए कि मेरे लोग तोहफे दें और दावतें करें, लोग मुझे नेक समझना शुरू कर दें। अब कोई मुझे ये तो नहीं कह सकेगा ना तुमने अभी तक हज नहीं किया, और फिर वो पता चले मैंने इतना एक्सपेंसिव पैकेज लिया है, लोगों को ये भी पता चलना चाहिए हमारे पास कितना पैसा है, सब हर सब दुनिया में चला गया, हालांकि हज जैसी इतनी बड़ी नेकी थी, कुछ भी नहीं मिला। और असल आखरा में लगा दिया तो फिर तो देखे बख्शिश भी हो गई, ये कितनी बड़ी अजर का बाइस भी बन गया, लेकिन उसको प्रोटेक्ट भी करना है। यानी कि आज ये नीयत है तो सही हरसल आखरा की, जब जा रही हूं वापस आई तो हरसल दुनिया की नीयत में बदल गई, नीयत को भी प्रोटेक्ट करना है। जैसे आप खेत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसान थ्रू आउट, जब तक फसल कट के उसके पास नहीं आ जाती, ठीक है, तो इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, मुशक्कत, ठीक है। दुनिया की खेती में भी मुशक्कत है, ऐसा नहीं कि वो तो बगैर मुशक्कत के ही हो जाती, उसमें भी मुशक्कत है, उसमें भी हार्ड वर्क है, यहां नहीं लगता वही काम आप कर रहे हैं, कौन सा काम बगैर मेहनत के होता है। और दूसरा ये कि खेती से आपको पता चल रहा था, खेती कभी भी ओवरनाइट नहीं उगती, आज लगाया बीज कल को उग के आ गई, उसके लिए बड़ा सब्र करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, चाहे वो दुनिया की खेती हो चाहे आखरत की, सब्र दोनों में करना पड़े। एक बंदा कमाई के लिए जाता है, कितना सब्र करना पड़े, दुनिया के लिए अगर वो शुरू से उसको तैयार किया गया, कितनी पढ़ाइयां उसने की, हमें कमाई करेगा कमाई करेगा, फिर उसके बाद कोई बड़ा आदमी बनेगा, उसका बड़ा नाम होगा, ये मतलब फलानी जगह पे बंगला लेगा, इसके आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, सब हरसद दुनिया में जा रहा है, फिर सारी पढ़ाई हरसद दुनिया में गई, सारी जॉब हरसद तो, लेकिन मेहनत कितनी की ना, और वही के रिस्क हलाल कमाए, मोहताज ना हो किसी का, अल्लाह ताला इसको ऊपर वाला हाथ दे, लोगों में पे भी खर्च करे, इसके जरिए अल्लाह की मखलूक को भी फायदा पहुंचाए, हरसल आखिरा बन गए। तो बहुत ये आयत एक है, लेकिन इसमें कितना कुछ है सोचने के लिए, बहुत कुछ है। इंसान थोड़ा दिला है ना, तो वो जो काम दुनिया के हैं उनके मामले में तो जल्दी करता है, और जो काम आखरत के हैं उनके मामले में डिले करता है, जो काम दुनिया के हैं उनके मामले में, हालांकि ये सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, दुनिया तो यहीं पड़ी भी है ना, आज नहीं मिली तो कल मिल जाएगी, मैं कौन सा अभी इतनी मुझे जल्दी है। आखरत के मामले में सोचना चाहिए कि जैसे बस जिंदगी खत्म होने लगी, कल मर जाऊंगा तो ये सारी नेकियों की जो तौफीक है ये भी साथ ही खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं इस वक्त को कीमती जानूं, इसलिए मैं इस वक्त को कहीं और ना लगाऊं, अपनी आखरत बना लूं। लेकिन आप देख लें कि आखरत का हर काम हमारे लिए डिले 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 है, तो अपनी जिंदगी को इस आईने में देखें, इस आयत के को सामने रख के ना, फिर ये हमारा होमवर्क है, इसके लिए एग्जाम्पल्स भी लेकर आएंगे, हमारा होमवर्क है कि हम जरा देखें हमारा किधर क्या लग रहा है। सारा दिन मैं काम कर कर के थक जाती हूँ, रात को लेटते हैं तो इन्ना साया कुम लशता, तुम्हारी सबकी कोशिशें मुख्तलिफ हैं, कोई किधर भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घर के काम, कोई जॉबिंग, कोई हर एक काम में लगा हुआ है ना, लेकिन कौन सी खेती में हम बो रहे हैं। नजीद लहू फी हरसी ही सिर्फ आखरत वाले के लिए, ठीक है, जिसने दुनिया की खेती में बोया उसके लिए नहीं है। अच्छा अब हम देख लें, और अच्छा इसको ये ना कहिएगा कि दुनिया क्या है जी, कही मैंने जैसे आपको बताया खाना पीता ये तो दुनिया है, सोना है ये तो दुनिया है, ये खुशी गमी है ये तो दुनिया है, काम कारोबार करना ये तो दुनिया है जी, आखरत ये इस चीज को आपने देखिए, ये जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना उनको यूज करना और उसके बाद शुक्रगुजारी करना, ये भी इबादत है। अल्लाह ताला ने नेमतों को इस्तेमाल करने से रोका नहीं है, उसने तो नेमतें दी इसलिए है कि तुम इस्तेमाल करो, उसका शुक्र अदा करो। तो इसलिए हम ये कहते हैं ना जी, नहीं दीन के साथ साथ दुनिया भी तो चलानी है ना, दुनिया किस चीज को कह रहे हैं, अगर आप दुनिया हराम कामों को कह रहे हैं तो नहीं वो करने, अगर आप दुनिया ये कह रहे हैं कि ये जो हलाल नेमते हैं इस्तेमाल करना, ये दुनिया है? तो ये दुनिया तो है नहीं, ये तो दीन ही है। किसने आपको कहा इन दोनों खानों में इनको डिवाइड कर दें? ये तो दीन ही है। खाना खाना भी दीन है, ये भी इबादत है, सोना भी इबादत आपका बन गया, रिज़्क़ के हलाल कमाना भी आपका इबादत बन गया। तो आपने कैसे इसको ये समझ लिया? तो इंसान लेकिन थोड़ा दिला है, वो जल्दी रिवॉर्ड चाहता है, और वो समझता है कि हर सब दुनिया में लगाने से मुझे जल्दी रिवॉर्ड मिल जाएगा, आखिरत किसने देखी वो तो गजब की बात है। एक्चुअली जो हर साल आखिरा में लगा रहा है ना, ये उसके ईमान की दलील है कि उसका ईमान स्ट्रोंग है आखिरत पर। क्योंकि इंसान कभी उस जगह नहीं लगाता जहां पे उसको ये पता है कि मुझे यहां से तो कुछ मिलना ही नहीं, कभी उस जगह नहीं लगाता जिसको यकीन होगा कि आखिरत आनी है और इन आमाल का अल्लाह ताला ने बदला देना है, वो ही हर साल आखिरा में लगाएगा, बाकी नहीं कोई लगाएगा। ठीक है, तो इसलिए सारे अपने कामों को देखें। मैं कहीं जा रही हूँ, गाड़ी लिया है, मैं निकली हूँ, मैं इसे क्या चाहती हूँ? अपने आप से सवाल करें, कॉन्शियस लाइफ गुजारें, रोबोट वाली लाइफ नहीं। मैंने अपनी दोस्त को भी गाड़ी में बिठाया, हम किसी दर्स पे जा रहे हैं, मैंने उसको क्यों बिठाया? ताकि चलो रास्ता कट जाए, चलो मेरे साथ कोई हो जाए, गपशप होती रहेगी। या मैंने इसलिए बिठाया, मैं लेके जाऊंगी ना वहां पे, ये जो वो सुनेंगी इसका अजर भी मुझे मिल जाना है। फर्क हुआ ना, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूं। मैं फलां के काम कर रही हूं, कभी याद करेगी कि सखी से पाला पड़ा, मैं ऐसे काम कर रही हूं, ये मेरा रब खुश हो जाए। ठीक है, पानी बैठ के पी रही हूं इसलिए कि मेरे डॉक्टर ने बताया कि इससे जो है ना आपके, मिसाल के तौर पे, आपका वेट लूज होता है, ऐसे वैसे बात कर रही हूँ। मैं पानी बैठ के इसलिए पी रही, मेरे नबी ने फरमाया कि पानी बैठ के पियो। मैं खबरें देख रही हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, चलो जरा देखूँ आज क्या खबरें, या मैं खबरें देख रही हूँ मेरे हालात से बाखबर हूँ, क्योंकि हालात से बाखबर होंगी तो मुझे पता चलेगा कल किन फितनों से बचना है, क्या करना है, उसके मुताबिक मैं अपनी जिंदगी को गुजारूं। फिर तो हर चीज में आप देख लें, हर चीज में आप अपनी, चाहे आपकी कमाई है, चाहे आपके बच्चों को टेक केयर करना है, चाहे आपको घर की सफाई करना है, चाहे आप किसी खुशी गमी में किसी के पास जा रहे हैं, किसी की खुशी में शरीक हो रहे हैं, किसी गम में उसको दिलासा दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपने घर में खाना पका रही हैं, आप मेहमानों को बुला रही हैं, आप दोस्त अहबाब से मिल रही हैं, आप मस्जिद जा रही हैं, मस्जिद जाने में भी मेरी क्या है, मैं किस खेती में डाल रही हूँ? हालांकि मस्जिद जाना आप वैसे कहें कि नहीं नेकी का ही काम है ना, वो तो हर साल आखिर आई है, नहीं, नॉट ऑलवेज। मस्जिद जा रही हूँ, आप कोई काम तो मुझे है नहीं, चलो आप मस्जिद ही चले जाते हैं, वहां पर चलो किसी से मुलाकात, तो जो फलाने कहा था वो भी आएगी, मजा आएगा, आज मस्जिद चलते हैं, वो भी आ रही है। देखिए ना कितना फर्क पड़ जाता है नियतों से। कोई चीज सुन रही हूं, किस लिए सुन रही हूं, क्या चाहती हूं इससे? कोई चीज देख रही हूं, ये प्रोग्राम मैं देख रही हूं, मैं किस खेती में लगा रही हूं, ये बातें मैं बोल रही हूं, मैं किस खेती में लगा रही हूं, इससे मुझे क्या चाहिए? बजाहिर एक लेक्चर देना, लोगों को दीन की तरफ बुलाना, बड़ा नेकी का काम है, लेकिन उसके बाद भी मैं क्या चाहती हूँ? मेरी तारीफें हूँ, मेरी तो अनाउंसमेंट ही नहीं हुई, मेरी तो तारीफ करनी चाहिए थी अगर मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ, लेकिन मजाल है कि मेरी तारीफ कर दें, मजाल है कि मेरे बारे में कुछ कह दें, हर सब दुनिया में डाल दिया ना। अब इंसान के अंदर वो छुपी हुई होती है वो चीज़, शैतान भी लेकर आता है, हमारी तो कभी तारीफें ही नहीं की। और एक है हर साल आखिर, आई डोंट केयर, मेरा अल्लाह बस मुझे रिवॉर्ड कर देना, हो सकता है आपकी तारीफ भी हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो इजाफी चीज है अल्लाह ने दे दी, हो सकता है तारीफ ही ना हो, सारा टाइम ही आप करती रही, आप पिछले 10 साल से कर रही हो वो काम नेकी का, किसी ने भी नहीं कभी तारीफ की, कभी किसी को रियलाइज ही नहीं हुआ, अभी किसी ने सोचा ही नहीं। अब मैं बता बता के कहूं कि देख मेरी तारीफ तो होनी चाहिए ना, किधर हमने अपने कामों को किधर जाया कर रहे हैं। यहां से शैतान पकड़ता है, और ये बड़ा अच्छा उसका टैक्टिक इसलिए है कि इंसान मुतमईन भी रहता है, मैं तो नेकी बहुत कर रही हूं, लेकिन साथ साथ वो हर सब दुनिया में ही जा रही है। तो फिर बस यहीं पे ले लो, आखरत में तो कुछ नहीं है, अल्लाह ताला शरीक से पाक है, खालिस अमल को कबूल करता है। इखलास कहाँ रह गया? उस सबसे ज्यादा यकीन करें, सबसे ज्यादा मुश्किल काम नेकी करना नहीं है, नेकी में इखलास पैदा करना, कि ये खालिस हो, प्योर हो, कि यहीं पे आके प्रॉब्लम आती है। अब हम अपने आप को बहुत नेक भी समझते रहे, अगर हमारे सारे काम हर सब दुनिया में ही जा रहे हैं, हम आखिरत में क्या पाएंगे? खुद सोचिए। ये नोट्स मैं खूबसूरत खूबसूरत इसलिए लिख रही हूँ, कल को डिस्प्ले हो, मैं दिखाऊं तो सही किसी को, इसको दिखाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं इसलिए लिख रही हूँ कल को कोई इससे फायदा उठा लेगा, कोई राइटिंग ऐसी होगी, कोई पढ़ेगा, पढ़ सकेगा तो फिर ही कोई फायदा उठाएगा, इसलिए लिख रही हूँ। चलो कोई कल को किसी के काम आ जाए, कोई बात पड़े, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाएगी, कोई चीज हो गई ना, आपने काम वही किया होता है, देखिए उसके कितना फर्क पड़ जाता। उस दिन अल्लाह अकबर, हाफिजा तो राफिया, कुछ होंगे कि नीचे होंगे ऊपर हो जाएंगे, कुछ ऊपर होंगे नीचे हो जाएंगे, वो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएगा, अल्लाह ताला धूल बना के उड़ा देगा, और किसी ने खजूर भी दिया तो वह पहाड़ के बराबर हो गई। क्या फर्क था दोनों में, कभी नहीं सोचा आपने? ये पहाड़ों के बराबर अमल धूल बन के उड़ गए, और खजूर है, और वो ओहद पहाड़ के बराबर हो गई, इतना बड़ा पहाड़, इतनी सी खजूर इतनी बड़ी हो गई, इतने बड़े बड़े पहाड़ डस्ट बन गए, किधर प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करना, इसके ऊपर मेहनत करनी है। हम सोचते हैं ना, हमें तो अब कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, बस कुरान हमने पढ़ना शुरू कर दी, नमाजें हम पढ़ देते, तहज्जुद हम पढ़ लेते, हिजाब मैंने शुरू कर दिया, बस मेरे तो सारे काम सही हो गए, इस पे कौन मेहनत करेगा? ये जो प्रॉब्लम है इसको कौन रिजॉल्व करेगा? और ये कांस्टेंट है, रोजाना की है, क्योंकि नियतें बदलती हैं बदलती हैं, स्टार्ट कभी किसी से होता है, एंड किसी और पे होता है, बीच में ही नियत बदल जाती है, और कभी ऐसा भी होता है नियत तो दुनिया की थी लेकिन उसके बाद रियलाइज हो गया, आज ही पता चल गया, आज ही आयत पढ़ी तो समझ आ गई, अब से नियतों को दुरुस्त कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आगे आसानी है, फिर आगे अल्लाह ताला और बढ़ा के देगा, इजाफा कर देगा। हमला फिल आखरत में नसीब देख लें, फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया उसके लिए फिर दुनिया में ही अल्लाह ने दे दिया ना, अब आखरत में तुम्हें तो चाहिए ही नहीं था, तुमने तो कभी आखरत की नियत ही नहीं की थी, तुम्हारे लिए आखरत में तो कुछ नहीं है, कोई हिस्सा है ही नहीं, दुनिया में भी देखिए घाटे में कौन रहा है इन दोनों में से, एक है उसके लिए इजाफा है, आखरत में तो डेफिनेटली ज्यादा ही करके, वो ये भी नहीं कि उतना, आखरत में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, दुनिया में भी हो सकता है अल्लाह ताला उसको दे दे, और हो सकता है बहुत ज्यादा दे दे, हो सकता है थोड़ा कम दे दे, हो सकता है दे ही ना, मतलब सिर्फ इत्मीनाने कल भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल गया ना। और एक है जिसने दुनिया ही की खातिर किया, उसको अल्लाह ताला ज्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता, आखरत में जीरो, हु इज द लूजर, हम फैसला खुद ही कर लें। अब से ये आयत समझ तो आ गई है, इसको अपनी पूरी जिंदगी पे मुहित करना है, ये काम बहुत बड़ा है, आयत एक है, सारी जिंदगी इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, एवरी डे हर काम में हर अमल में, आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे अगर हर अमल में ही हर सल आखिर आपने चाह ली तो, यकीन जाने हम तो बहुत बहुत नफे का सौदा करेंगे हर दिन, हमारी आंख का उठना भी अगर हर साल आखिरा में ही जा रहा है तो, हमारा बोलना हमारा सुनना, वॉच वॉच करें अपनी हर अमल के पीछे नियत को। अम लहुम शुरकाओ, क्या उनके लिए कोई शरीक है, या उनके लिए कोई शरीक है। यहां पे शुरका से मुराद वो शरीक नहीं है कि जो पत्थर के बुत हैं या लोगों ने और शरीक बनाए होते हैं, वो नहीं है यहाँ पे, बल्कि मुराद कौन है, वो इंसान या शयातीन या जो भी कोई और हस्तियां हैं, हकूमतें हैं, कोई पीर फकीर हैं, कोई कोई है। हम का माना यहाँ पे बल भी ले सकते हैं, बल्कि बल्कि भी कर सकते हैं इसका, बल्कि ये जो वो शरीक है, शराहुलहुम, यहां से पता चला कि वो कौन से शरीक है जो शरीयत मुकर्रर करते हैं उनके लिए, दीन के तरीके मुकर्रर, मिनत दीन, दीन में से। दीन का मतलब, दीन हम समझते हैं उसका जो लफ्ज हम बोलते हैं, दीन तरीका भी है, कानून भी दीन है, जजा सजा का माना भी होता है। तो कानून उनके लिए वो डिफाइन करते हैं, वो मुकर्रर करते हैं कि जी क्या हलाल है क्या हराम है, ये वो बताएंगे। मालम या अदम बिहिल्ला, जिसका इज़न अल्लाह ने नहीं दिया हुआ, अल्लाह ताला ने वो हलाल हराम के जाब्ते, वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स अल्लाह ताला ने नहीं डिफाइन किए, वो खुद करते हैं, उनके जो शरीक हैं जिनको उन्होंने शरीक बनाया हुआ, वो इनके लिए डिफाइन करते हैं, वो बताते हैं हलाल को हराम करना भी उतना ही बुरा है जितना हराम को हलाल करना। हम तो सोचते हैं ना ये चीज हराम है, इसको देखो वो खाते हैं या वो उन्होंने इसको हलाल कर लिया और उन्होंने इसको यूज कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है, उसको तो हम बुरा समझते हैं, लेकिन हलाल को हराम करना भी बुरा है। एक चीज हलाल है उसको हराम कर दिया, हराम कह दिया, तो जी ये भी अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाना है। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे सहाबी जिन्होंने कहा था कि हम तो, वो पहले क्रिश्चियन थे, उन्होंने कहा हम तो ऐसा नहीं करते थे, ये जो आया है कि उनको अरबाब बनाते हैं अपने रुहबान को और अहबार को, उनको हम खुदा बनाते थे, तो हम तो कभी नहीं ऐसा करते थे, हजरत अदी बिन हातिम थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों, तुम्हारे जो उलामा हलाल को हराम और हराम को हलाल करते थे, तुम उसको वैसा नहीं समझते थे? उन्होंने कहा हाँ ऐसा है, हम ऐसा ही करते थे, यानी जिन जो उनके आलिमों ने कह दिया, जो उनके जो बड़े दीन वाले थे उन्होंने कह दिया, उसको उसी तरह हलाल और हराम समझ लिया, अल्लाह ताला की नहीं परवाह की कि उसने क्या हलाल हराम किया। ये भी अल्लाह के साथ शरीक बनाना है, ये भी एक शिर्क है, समझ आई बात? क्योंकि ये अल्लाह ताला का सिर्फ हक है कि वो बताए कि हलाल क्या और हराम क्या, ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता, कोई अपने तौर पे इसको फिक्स नहीं कर सकता, इसलिए यहां पे बताया कि अम लहुम शुरकाओ, यहां उन्होंने कोई कोई उनके लिए कोई शरीक है, तो इसको शिर्क कहा गया कि जो उनके लिए दीन को डिफाइन कर रहे हैं, दीन के तरीके मुकर्रर कर रहे हैं, जिनकी अल्लाह ताला ने कोई इजाजत नहीं दी, अल्लाह की इज्जत नहीं है, चाहे वो सियासत के मामले हो, चाहे वो तर्ज जिंदगी हो, लाइफ स्टाइल में हो, चाहे वो सिर्फ खाने पीने से इसको ना लें कि वो खाने में कुछ हलाल हराम कर दिए, सिर्फ वो बात नहीं है, सूद है उसको हलाल हराम कर दिया, शराब है उसको हलाल हराम करने के खुद ही फैसले कर दिए, कितनी हलाल है और कितनी हराम है ये भी खुद ही डिफाइन करने बैठ गए। अल्लाह ताला का दीन मुकम्मल हो चुका है, और अल्लाह का दीन वो ही है जो उसकी किताब में उतरा और जो उसके नबी ने बता दिया, बस उसके अलावा तीसरी चीज कोई है नहीं, और ये इतना संगीन जुर्म है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वलौला कलिमतुल फसली लकुदिया बैनहुम, अगर ना होती बात फैसले की, इससे पहले फैसला ना हो चुका होता तो क्या होता, अल्लाह ताला इनके दरमियान, यानी किस चीज का फैसला ना हो चुका होता, ये कि अल्लाह ने इनको मोहलत देनी है, ये इनकी जिंदगी इतनी है और इसके अंदर इनको अल्लाह ताला ने खुली छुट्टी दी हुई है, इनको अल्लाह ताला ने आजादी दी हुई है जो भी कुछ करने की, यहाँ एक कयामत का दिन मुकर ना किया होता तो अल्लाह ताला यहीं पे उनको अजाब दे के खत्म कर देता, इनकी पकड़ कर देता, लेकिन अल्लाह ताला ने एक जिंदगी की मोहलत भी दी हुई है, इतनी इसको मैंने जिंदगी देनी है, इसमें इसको खुली छुट्टी भी देनी है। وَإِنَّ ظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ظالموں کے لیے تو بے شک دردناک عذاب ہے. آج کھلی چھٹی ہے لیکن دا اینڈ ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہے. یہ وہ ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر رد و بدل کرتے ہیں, اللہ کی شریعت کو توڑتے مروڑتے ہیں, اپنی مرضی سے چیزوں کو بنا لیتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں کوئی چیز نہیں رہ گئی جس کو انہوں نے جو حرام سے حلال نہ کیا ہو, چاہے وہ گانا بجانا ہو, چاہے وہ شراب نوشی ہو, چاہے وہ سود ہو, ہر چیز کو اپنی مرضی سے وہ حرام ہے, بعض احادیث ہیں اس بارے میں. لیکن آپ دیکھ لیں فتویٰ شاپنگ ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ, آپ دیکھ لیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی کا فتویٰ مل جائے گا. تو یہ شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ, اے اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کو حرام کیا, یہ کون ہوتے حلال کرنے والے؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن نہ مقرر کیا ہوتا تو یہیں پہ ان کا فیصلہ چکا دیتا. تر الظالمین مشفقین مما کسبوا, تم دیکھو گے ظالموں کو کیا اس دن, ظالموں کو دیکھو گے کیا کس حال میں ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمائی کی. اس دن ان کو پتا چلے گا یہ ظالم جو دنیا کے اندر اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے اس طرح سے, اس دن وہ ڈر رہے ہوں گے اپنے ہی کاموں سے, کسی اور کے کام نہیں ہے اپنے ہی ان کے کام ہیں, ان سے ڈر رہے ہوں گے اپنی ہی کرتوتوں سے, اپنے ہی اعمال سے, اپنی ہی کتاب کو دیکھ کے. چاہے وہ کافر ہیں, چاہے وہ مشرک ہیں, چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہے. ہم دیکھتے ہیں نا سورہ کہف میں بھی کہ کس طرح انسان اپنی کتاب کو دیکھ کے کہے گا کہ یہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا, اس میں تو کوئی چھوٹی بڑی بات ہی نہیں چھوڑی گئی, ہر چیز اس میں لکھی. ڈر رہا ہوگا وہ, دنیا میں تو اس کے لیے جلدی مچاتے نا, کب آئے گی قیامت, لے بھی آئے نا قیامت, کیوں نہیں آتی, جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہیں لے آئے نا اس کو, اب دھمکیاں دیتے ہیں اب لائے نا. تو دنیا میں ڈرتے نہیں تھے نا, اس دن ڈریں گے. اور مشفق کون سا ڈر ہوتا ہے, یہ وہ ڈر ہے کہ جس میں انسان مایوسی کے قریب پہنچ جائے, اس قدر زیادہ خوف زدہ کہ بالکل مایوس ہو جائے, اب مجھے کچھ نہیں ملنا, اب میرا کچھ نہیں بن سکا, وہ والا ڈر کہلاتا ہے. اللہ اکبر, اور انسان کی کہ کیا حالت ہوگی اس وقت. فطر المجرمین مشفقین مما فی, وہاں پہ بھی یہی بات ہے, تم دیکھو گے مجرموں کو, ڈر رہے ہوں گے کہ اس کے اندر کیا ہے. وہ یقولون یا ویلتنا, اے ہماری بدبختی, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا اصحابہ, وجدوا ما عملوا حاضرا, وہ اپنے عمل کو دیکھ رہے ہوں گے سامنے, اللہ تعالیٰ کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. یہ کب ہوگا؟ اودی الکتاب, جب کتاب رکھ دی جائے گی, جب کتاب سامنے آئے گی تب ان کا یہ حال ہو جائے گا. تو سوچیں کہ انسان اپنے ہی عمل سے ڈرنے لگے, حالانکہ یہ تو اس کے اپنے کام ہے نا, اپنے کاموں سے کیوں ڈر رہا ہے؟ کیونکہ آج پتہ ہے کہ ان کاموں کا وبال ہوگا, وہ واقع بہم, اس کو پتہ ہے کہ ان اعمال کا جو میں نے کیا ہے ان کی سزا آج ملنے والی ہے, یہ واقع ہونے والا ہے اوپر, یہ واقع ہو کے رہے گا, آج میں بچ نہیں سکوں گا. تو دنیا میں جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو امن دے گا, بے خوف کر دے گا. یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ دو امن اور دو خوف جمع نہیں کرتا. یہاں پہ جو ڈرا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بے خوف کر دے گا. میں یہاں پہ ہم ڈرنا ہی نہیں چاہتے, بلکہ لوگوں کو منع کرتے, ہمیں کوئی ڈرائے نہ, ہمیں ڈرانے والی باتیں نہ کیا کر, ہم ڈر جاتے ہیں اسے. اللہ کاش ہم ڈر جاتے ہوتے, کاش ہم ایسا ہوتے کہ ہم ڈر جاتے ہوتے. ہم تو اتنی آیتیں سن کے بھی, لوگوں کو مرتا دیکھ کے بھی, قبروں میں اتار کے بھی ڈرتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارا انجام ہونا ہے. اور مالک بن دینار تھے, جہنم کا ذکر کرتے تھے تو ایسے ہو جاتا تھا جیسے کہ جہنم انہی کے لیے بنی ہے. آپ اسلاف کے بارے میں دیکھیں کیسے وہ تندور کو ہی دیکھتے تھے نا, تو ایک ہمارے اسلاف میں سے تھے, بے ہوش ہو گئے, एक के बारे में आता है, उन्होंने छोटी छोटी लकड़ियों को जमा करके जब लोगों ने आग लगाई तो वो उसको देख के इस कदर रोए, क्योंकि अल्लाह ताला देखो छोटी छोटी लकड़ियों को देखो जमा करके जैसे दुनिया के अंदर आग लगा देते, अल्लाह ताला उस दिन इंसानों के जरिए आग को दहकाएगा। उनके लिए ये बातें जो आम रोजमर्रा जिंदगी, जो हम रोज आग जलाते हैं, आग देखते हैं, हम तो हर बहुत बड़े बड़े चीजें देखते हैं, मरते देखते हैं लोगों को, सिसकते देखते हैं लोगों को, फिर भी हमें को परवाह नहीं होती, कभी इस चीज की याद ही नहीं आती कि ये देखो ऐसे वहां की आग कैसी होगी, उससे हम रो पड़े, उससे कोई बेहोश होके गिर जाए, कहाँ ऐसे होता है हमसे, हम तो इतना सा भी डरना नहीं चाहते कहीं मेरा मजा खराब ना हो जाए, ना मजा ना खराब हो जाए, इधर कोई मरा 2 मिनट के लिए बस अफसुरदा हुए, अफसुरदा शक्ल बनाई, उसके बाद फिर वो एक खिलखिलाना हंसना, कभी भी ये याद ही नहीं आती हमें आखरत की। तो जो यहां डरा ना, वो आखरत में अल्लाह ताला उसको ना डर कर देगा, बेखौफ कर देगा। तो यहां का डर तो एक नेमत है, यहाँ का खौफ तो एक नेमत है, बल्कि सहाबा बैठते थे तो जैसे हम हजरत उमर फरमाते थे कि मुझे मुझे ऐसी बातें बताओ, ऐसी बातें बताओ मेरे से, ऐसी बातें करो, हालांकि खुद सहाबी रसूल दूसरे से फरमा रहे, हम सुनना भी नहीं चाहते, डरना भी नहीं चाहते, बल्कि ऐसी जगहों से भागते हैं जहां पे हमें कोई ऐसी बात समझ आ जाए, सुन जाए, जिसमें कोई खौफे खुदा की बात हो, कयामत की बात हो, आखरत की बात हो। तो अल्लाह ताला जमा नहीं करेगा, हाँ जो यहाँ पे खौफ ज्यादा हुआ अल्लाह उसको वहां पे बेखौफ कर देगा, जो यहाँ पे न डर हो गया, बेखौफ हो गया, उसको वहां पे डराया जाएगा, वहां पे उसके लिए खौफ है, फिर वहां रोएगा वो, तो या तो यहां रो ले या वहां रो ले, यहां डर जाए या वहां डर जाए, चॉइस तो हमारी अपनी है, हम किधर डरना चाहते हैं, नहीं डरना चाहते यहां पे ना तो वहां पे डर होगा, कि ये हदीस तो हमारे सामने है, दोनों जगह अमन नहीं मिल सकता, आप यहां पे भी कहेंगे हाँ हाँ ये होता रहे, यहाँ पे भी बस हंसते बोलते रहे, कभी हमारे अंदर डर आई ना आखरत का, अब वहां पे भी हम इसी तरह होंगे, ऐसा नहीं है। हुस्नु रफीकी, आप सल्लम ने बनाया गम मेरा साथी, वो इसके पीछे नहीं गम करते थे, आज खाना नहीं मिला, जॉब का क्या बनेगा, आए आज बच्चे भूखे सो गए, उनके आखरत के गम थे जो उनको रुलाते थे। वो हुआ वाकई उम्मीद, और वो वाकई होने वाला है, उन पर नतीजा देख के डर रहे होंगे ना, आप डरने का क्या फायदा, अब तो नतीजा देखना ही होगा। वल्लदीना आमनू वामिलु सोलहात, यहाँ पे कंपैरिजन है, देख लेना वही जो हर्षद दुनिया वाला था, हर्षद आखिरा वाला था, एक ने तो दुनिया का ही करता गया और उसी की खेती में लगाता गया, उसने अपनी मेहनत का सिला वहां पे ही पाना चाहा, अब तो कुछ भी नहीं है, और वो जो ईमान और अमले साले करके है, अमले साले में है ही नियत, कि पहले नियत अल्लाह के लिए खालिस हो तभी वो साले अमल बनेगा, वरना तो बनेगा ही नहीं। तो जिस जो ईमान लाया और उसने साले अमल किया, फी रौदातिल जन्नात, रौदात में होगा, बागों में, जन्नतों के, जन्नत भी घने बाग को कहते हैं, लेकिन रौजा की जमा रौजात है, बाग के अंदर भी एक जिसको कहते हैं गुलिस्तान, पुरबहार खित्ता, उसको कहते हैं रौजा, जहां पे पानी भी हो सब्जा भी हो उसको कहते हैं। तो जन्नत के खित्तों में सबसे जो पाकीजा जगह है, मुआज्जत जगह, वो रौजा है, और आपको पता है ना रियाजुल जन्ना कहते हैं, जो मदीना में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर से हुजरे तक, रियाजुल जन्ना, जन्नत का बाग, जन्नत का गुलिस्तान, जन्नत की जमीन है वो। इल्म की मजलिसों के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रियाजुल जन्ना है, जन्नत के बागात हैं, फरमाया जिक्र की मजलिस है, जो अल्लाह के जिक्र की होती ना, वो उसमें जब जाओ तो चार चुगलिया करो इन बागों से, खा पी लिया करो, यानी इनसे फायदा उठाया करो। जो साथ बैठ के इल्म हासिल करना है, वो एक मजलिस होती है, उसको रियाजुल जन्ना कहा है। अकेले भी आप इल्म ले सकते हैं, लेकिन जो मिलके बैठ के लेना होता है ना, उसमें बड़ी बरकत है। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए रौजातुल जन्नात तैयार किए हैं, लहम लिए उनके मा यशाउना, जो वो चाहेंगे इंदा रब्बी, उनके रब के हम। एक हदीस से पता चलता है कि कोई खेती बाड़ी करना चाहेगा जन्नत में तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी, किसी को औलाद चाहिए होगी वहां पे तो फौरन से औलाद हो जाएगी उसके। जो दुनिया की जो हसरतें थी, जो महरूमियां थी कि हाय काश मेरे पास ये होता, वो सब वहां पे पूरी हो जाएंगी। इसका मतलब है कि दुनिया में हम क्यों फिर हलकान रहते हैं, दुनिया में किसी से जुदाई होगी वो भी वहां पे मिल जाएगा, दुनिया में कोई चीज की हमेशा ख्वाहिश रही यहाँ पे पूरी नहीं हुई तो वहां पे मा यशाउन, जो वो चाहेंगे। क्या चाहत होती है एक इंसान की, यहाँ पे बहुत सारी चाहते तो इंसान लेके मर ही जाता है, कभी भी वो पूरी नहीं होती, इंसान तड़पता ही रहता है। तो यहाँ पे ना तड़पे, उस पे सबर कर लें, सबर कर लेंगे और अपनी सारी कुव्वत और ताकत को नेक आमाल में लगा दें तो जन्नत में जाके आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि उसे बहुत अच्छे हाल में। मसलन एक मिसाल के तौर पर, किसी औलाद नहीं है, उसको क्या पता, यहाँ पर सारी जिंदगी वो इसी गम में रहा है, औलाद होती तो मेरा क्या था, है औलाद होती बच्चे देख देख के उसको डिप्रेशन होता है, उसकी सारी जिंदगी इसी गम के अंदर घुली भी है, किसी चीज में दिल नहीं लगता, उसको क्या पता। यहाँ पे अगर मिल भी जाती तो उसके क्या गम उसको देखने पड़ते, क्या किस चीजों से वो गुजरता। औलाद वाले को सारे बहुत खुश तो नहीं, कितने कितने प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन जब जन्नत में उसको औलाद मिलेगी तो परफेक्शन के साथ होगी ना। इस तरह ही दुनिया के अंदर किसी से जुदाई हो गई, सारा वक्त उसी का गम, उसी का गम, उसी के अंदर बीमार पड़ गए, वो गम साथ ही नहीं छोड़ता, तो क्या पता वही बंदा जिंदा होता तो उससे कोई तकलीफ पहुंचती, वही आजमाइश बन जाता, वही आखरत के लिए इंसान के लिए कोई प्रॉब्लम बन जाता। लेकिन आखरत में जब जन्नत में जाके वो मिलेगा तो कभी जुदाई भी नहीं, हमेशा की खुशी और फिर परफेक्शन के साथ, उसकी तरफ से कोई गम नहीं आएगा। तो वो जो वहां पे ना इंदा रब्बी है, उनके रब के पास, क्योंकि मेहमान नवाजी रब की तरफ से होगी, वो मेजबान होगा, आप मेहमान होंगे, अल्लाहुम्मा जालना मिनहु। तो जब हम अपने मेहमानों की इतनी कदरदानी करते हैं जैसे जितनी हमारी औकात होती है, जितना हमारे पास बस होता है, जितनी भी हमारे पास ताकत होती है उसके मुताबिक हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने मेहमानों का बड़ा इकराम करते हैं, तो जब रब मेहमान नवाजी करेगा तो वो कैसी होगी सोचे, फिर आप कितने वीवी वीवी आईपी होंगे। लेकिन ये किसके लिए, दालिक हुवल फजलुल कबीर, पहले इस बात को कर लेते कंप्लीट फिर पता चलेगा ये किसके लिए। दालिक हुवल फजलुल कबीर, ये है फजल, बड़ा डिजर्व नहीं करते तुम, अल्लाह ताला का फजल है, फजल होती जो इजाफी चीज होती, यानी आपका हक नहीं होता, जैसे आप मजदूर को मजदूरी तो देते हैं उसके साथ आपने कुछ टिप भी दे दी, वो टिप फजल है, वो ये नहीं है कि उसका हक था कि आप उसको जरूरी देते। तो कोई इंसान जन्नत और इसकी नेमतें डिजर्व नहीं करता, उसका हक नहीं है, मेरा हक बनता है मुझे जन्नत मिले, नहीं, ये अल्लाह का फजल है। ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ये خوشخبری पता है किन लोगों के लिए, ये खुशखबरी अल्लाह ताला अपने उन बंदों को देता है, कोई स्पेशली बंदे होंगे, किस चीज की, ذَلِكَ, ये पिछली बात की तरफ इशारा है, ये जो जन्नत की, ये रौदातुल जन्नत, और जो चाहेंगे मिलेगा, जो चाहेंगे मिलेगा। इंसान की चाहत भी ना एक लिमिट तक होती है, हम कितना भी चाह लें, आप देख लें सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, हमें तो अपनी चाहतों का भी पता नहीं हम क्या चाहते हैं। आप ये देखें कि हम कितनी देर दुआ मांग पाते हैं, रमजान है या हज है, हम कितनी देर दुआ कर पाते हैं, घंटा कर लेंगे, 2 घंटे कर लेंगे, उसके बाद दुआएं भी खत्म हो जाती हैं। बस हमारी तो इतनी सी चाहते हैं, इतनी छोटी, क्योंकि हम खुद बहुत छोटे हैं ना। अल्लाह ताला इस चाहत के अलावा देगा, और ये उसका फजल होगा, जो मांगा उसके भी अलावा दिया, उससे भी ज्यादा दिया। तो हम तो जान भी नहीं पाते कि हमें क्या क्या चाहिए। ये अल्लाह ताला का फजल है जो वो दुनिया में भी देता है, हमारे मांगने के सिवा हमें देता है। हमने सब चीजें तो नहीं मांगी, आंखें किसने मांगी, नाक किसने मांगी, पता नहीं हमारे अंदर कौन कौन से अज़ा काम कर रहे हैं, वो किसने मांगे, हमने तो कभी भी नहीं मांगे। अल्लाह मुझे मेदा दे देना, अल्लाह मुझे गुर्दे दे देना, अल्लाह मुझे आंते दे देना, दिल मेरे सही हो, लंग, किसने मांगा। अल्लाह हू अकबर, ये सब अल्लाह ताला का फजल है। और आखरत में भी अल्लाह ताला ये सब कुछ देगा जो वो चाहेंगे, चाहत लिमिटेड है, और उसके अलावा भी अल्लाह ताला देगा। वो इंसान चाह चाह के भी, अल्लाह ताला फरमाएगा मांगो और मांगो और मांगो, आखिरी जन्नती को भी अल्लाह ताला फरमाएगा और मांगो, वो मांग मांग के भी बस अब मांग भी खत्म हो गई। अल्लाह ताला फरमाएगा मैं तुम्हें जो दुनिया है और उससे 10 गुना, पूरी दुनिया और इससे 10 गुना ज्यादा मैं तुम्हें अता करता।